ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक नंबर क्या है सर? 30 राइट। हम भागवत के ये चटास्कंद है ना, चटास्कंद के 7वां अध्याय 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भृगुरुवाच यन्माजया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुवृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन्श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः भृगुरुवाच यन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुवृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन्श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः भृगुरुवाच यन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुवृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः भृगुरुवाच नापि तत्त्वम् स्वयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः यन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुवृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः भृगुरुवाच यन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादय स्तनव्रत समसी स्वपन्तः नात्मन्श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मा. वैष्णवी भृगुः भृगुः उवाच. श्री भृगु ने कहा यत् जो मायया माया से गहनया दुर्लग्य अपहृत चुराया हुआ आत्मबोधाः स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान ब्रह्म आदयः ब्रह्मा इत्यादि तनुवृतः जीवात्माओं सहित तमसि मोहांधकार में स्वपन्तः सोए हुए नहीं आत्मन जीवात्मा में श्रितम स्थित तव तुम्हारा विदन्ति जानते हैं अधुना अब अपि निश्चय ही तत्त्वं परमपद सह वह आप अयम यह प्रसीदतु प्रसन्न हो भवान आप प्रणत आत्म शरणागत जीव के बंधु सखा मित्र. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा. श्री प्रभुपाद की भृगु मुनि ने कहा हे भगवान ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया के दुर्लंघ्य जादू के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं. देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं. वे यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं. ना तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के निरंतर सखा एवं रक्षक हैं. अतः आप हम पर कृपालु हों और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दें. इस तरह भृगु मुनि ने भगवान श्री विष्णु को संबोधित करते हुए बताया. इसे जब भगवान विष्णु वो यज्ञ कुंड में अचानक उन्होंने दर्शन दिया यज्ञ पूरा होने के बाद, उस समय अलग अलग महान पुरुष जैसे ब्रह्मा शिव भृगु और बाकी ब्राह्मण सब लोग अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे हैं. तो आज की प्रार्थना भृगु कर रहे हैं. ऐसे तात्पर्य दक्ष के यज्ञ समारोह में ब्रह्मा तथा शिव समेत सबों ने जो उद्दत आचरण प्रदर्शित किया था भृगु मुनि उससे अवगत थे. इस संसार में जीवात्माओं में प्रमुख ब्रह्मा का नाम लेकर वे बताना चाह रहे थे कि ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर शिव समेत सभी लोग. इसमें थोड़ा गलती लग रहा है क्योंकि जब ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर बोलते हैं विष्णु को छोड़कर बस. ये नया है क्या? नया प्रिंट है. उसमें मिस्टेक है. उसमें यही है ना रचने. ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम गुण. ये 31 है. 30 इधर है ना. ठीक है. दक्ष के यज्ञ समारोह में ब्रह्मा तथा शिव समेत सबों ने जो अपयशपूर्ण आचरण प्रदर्शित किया था भृगु मुनि उससे अवगत थे. इस संसार में जीवात्माओं में प्रमुख ब्रह्मा का नाम लेकर वे बताना चाह रहे थे कि विष्णु को छोड़कर ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देहात्म बुद्धि तथा माया के जादू के वश में थे. समझ गया ना. वो गलती है उसमें. बीबीटी को लिख देना उसको. बोलते हैं यही भृगु की दृष्टि है. जब तक मनुष्य शरीर को आत्मरूप मानता है तब तक वह परमात्मा या भगवान को नहीं समझ पाता। भृगु ने अपने को भी अपराधकर्ताओं की सूची में सम्मिलित किया क्योंकि वह जानता था कि वह ब्रह्मा से बड़ा नहीं है। अज्ञानी पुरुषों या बद्ध जीवों को माया के वशीभूत होकर अपनी दयनीय स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसकी एकमात्र औषधि विष्णु की शरण में जाकर सदैव क्षमा याचना करना है। उद्धार के लिए मात्र भगवान ही अहित की कृपा पर निर्भर करना चाहिए। अपनी शक्ति पर नाम मात्र भी आश्रित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित मनुष्य भक्त की यही सिद्ध स्थिति है। भगवान वैसे तो सबों के सखा हैं, लेकिन जो शरणागत हैं वे उनके विशेष मित्र हैं। अतः सरल उपाय यही है कि बद्ध जीव भगवान की शरण में रहे तो भगवान उसे सभी भौतिक बंधनों से दूर रखेंगे। देखिए इधर जो भृगु बोल रहे हैं उसको अगर सरल भाषा में बोलना हो तो ऐसा बता सकते हैं कि जो जीवात्मा इस दुनिया में देहात्म बुद्धि को अपना कर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही खुद मानना, आत्मा मानना, इस तरह भाग रहे हैं, वो जीव जरूर कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे इस दुनिया में। वो ऐसे गलती करेंगे जो खुद को भी दुख देता है, दूसरों को भी दुख देता है, दूसरे जीवों को भी ऐसे दुखदायक होता है। वो एक मीनिंग है। और एक मीनिंग है कि जो इस तरह से इस दुनिया में जीव अपने आप को शरीर से पहचानते हैं वो ऐसे कार्य कर बैठेंगे जो यशस्वी नहीं होगा, अपयश उनको लाएगा, उनको अपयश लाने वाला कार्य करेंगे वो। और खास करके काम क्रोध लोभ ये तीन के वश में आकर वो ऐसे निंदनीय काम करेंगे जिससे उनको भी अपयश प्राप्त होगा, बाकी दुनिया के लोगों को भी तकलीफ होता है उससे। इस तरह वो खास करके बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो जीवराशियां इस दुनिया में हैं, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, क्योंकि वो तीन गुणों के प्रवाह में आने के कारण वो इस तरह के कार्यकलाप करते हैं, कार्यकलाप में फंस जाते हैं इस तरह। उसमें ब्रह्मा और शिव जी का भी नंबर लग जाता है उसमें, ऐसे वो बोलते हैं। क्योंकि वो इस प्रार्थना में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि हरेक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसके प्रार्थना में किसी न किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए वो बोल रहा है। जैसे पहले दक्ष प्रजापति बोल रहा है भगवान को, हे भगवान आप तीन गुणों से परे हो, लेकिन जो लोग तीन गुणों के अंदर हैं वो लोग अज्ञानता के वश में आकर प्रतिरोध लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? शिव के बारे में बोल रहे हैं। हो गया पूरा, शिव जी ने रिवेंज ले लिया, रिवेंज वो सोच रहा है कि शिव जी ने उनको बकरी का सर दे दिया है। तो इस तरह वो बोल रहा है कि भगवान आप शिव जी से श्रेष्ठ हो क्योंकि आप समझदार हो, आप माफ करने वाले हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है आप माफ नहीं करता है, सीधा नहीं बोलता, वो कैसे बोलता है, थोड़ा घुमा कर बोलता है इसे। लेकिन हमारे आचार्यों ने पहचान कर लिया है इसके बारे में बोल रहा है। देखिए जब व्यास पूजा महोत्सव होता है, गुरु की गुणगान करते हैं लोग, उसमें अलग अलग व्यक्ति जो गुणगान करता है उसके गुणगान के क्वालिटी से आपको पता चल जाता है कि उसके जीवन में क्या क्या लक्ष्य है उसके। अगर कोई बोलता है महाराज जी जब से आपके हम शिष्य बने तब से हमारे बिजनेस धूमधाम से चल रहा है, बढ़िया दुगुना हो गया, त्रिगुना हो गया, पता नहीं एक बार आप हमको आशीर्वाद दिया, तो उसका मतलब क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, आप समझ जाते हैं। जो किस तरह हम प्रशंसा करते हैं, जैसे कहीं और भी हमने पढ़ा था कि अलग अलग देवता लोग सर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की भागवत में, वो बोल रहे हैं, अभी इंद्र बोल रहा है कि हे भगवान ये हिरण्यकश्यपु जब तक राजा था उस समय तक हम लोग, हमको हमारे यज्ञ ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हविशान्न, यज्ञ से देवताओं को जो मिलता है वो हमें मिलता नहीं था, अभी वो जाने के बाद हमको मिल रहा है। आपको थैंक यू, आप आपने उसको खत्म कर दिया इसलिए हमको मिल रहा है, हमारा शेयर मिल रहा है, हमारे बाग यज्ञ से मिल रहा है हमको, ऐसे बोल रहा है कोई। इस तरह अलग अलग लोग बोल रहे हैं। अभी ब्राह्मण लोग खुश हैं कि हम अब तक हम आपके गुणगान कर नहीं पाए खुले खुले हैं, लेकिन ये जाने के बाद हम लोग आपकी वैदिक मंत्रों का उच्चारण हम खुशी से कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग लोग बोलेंगे अपने अपने। तो इस तरह भृगुमुनि भी बोल रहा है कि शिव जी बड़े हैं, दक्ष भी बड़ा है, ये सब लोग बहुत यशस्वी पुरुष हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन इस तरह से देहात्म बुद्धि के आ जाने के कारण, देहात्म बुद्धि में के बुद्धि के वश में पड़कर ये लोगों ने इस तरह की बर्ताव की है। देखिए, आत्मा जो है पवित्र है, शुद्ध है, मुक्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब इस दुनिया में आता है तो आत्मा के ऊपर एक आवरण आ जाता है, ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर का आवरण आ जाता है। आवरण आने के बाद आत्मा अपने आप को देखता है कि सोचता है कि मैं ये मांस हड्डी से बनाया हुआ शरीर हूं, उससे पहचानना शुरू हो जाता है उसको। इसलिए आप देखेंगे हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इस प्रांत में जन्मा हूं। ये हमारे बुरुजन प्रभु आए थे, उन्होंने बोला कि ये एक सेमिनार दिया उन्होंने जप के ऊपर, पहले लगभग आधा घंटा बोला लोगों को, देखो ये पहली बात समझो, तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, लेकिन ये शरीर मृत पदार्थ है, मर मिटने वाले चीज है, ये सिर्फ एक पोशाक के समान है। सब लोग समझ गए, सब लोग बोले समझ गए, हमने बहुत बार सुना है प्रवचन, मालूम है हमको, पहले भी सुना हमने। वो बोले नहीं, खास करके जब करते समय याद रखना आवश्यक है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ। सब लोग बोला हाँ। बोले अचानक उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोग पंजाबी हैं, तो हाथ ऊपर किया वो लोग। उनको मालूम नहीं था, ऐसे ही पूछा प्रभु जी ने, 30 लोग हाथ ऊपर कर दिया। प्रभु जी बोले, देखो तुमने बोला कि समझा, क्या समझा तुमने, क्या आत्मा पंजाबी है महाराष्ट्रीयन है, ऐसे पूछा उन्होंने। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं स्किन डिजीज बोलते हैं। क्या है स्किन डिजीज का मतलब, क्या है, पोशाक से पहचानना अपने आप को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके एक संभाषण में, एक आदमी था वो ब्लैक कोट पहना था, उसके मित्र था जो व्हाइट कोट पहना था। तो प्रभुपाद जी ने उनके नाम पूछा, दोनों ने नाम बोला। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर मैं आपको पुकारूंगा, ए व्हाइट कोट आ जाओ इधर, ए ब्लैक कोट चले जाओ, तो अगर ऐसे बोलेंगे तो बोला आपको अच्छा लगेगा। वो बोले नहीं स्वामी जी, वो तो निंदा हो जाएगा, हमको कोट से क्यों पहचानते हैं, हमको तो नाम है ना हमारा। तो प्रभुपाद जी बोला ऐसे ही समझो, कोट तुम्हारे से अलग है, इस तरह तुम्हारा शरीर भी आत्मा से अलग है, उससे पहचानो मत। वो तो देखिए, एक एक क्षर और अक्षर दो शब्द इस्तेमाल किए हैं भगवद गीता में, आप सुनेंगे, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। भगवान बोल रहे हैं क्षर आत्मा वो आत्माएं हैं जिनको भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जो धीरे 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 घटता जाता है, अचानक अप्रकट हो जाता है, वो मृत्यु है। करेक्ट ना, जैसे हमारे शरीर देखिए, बचपन से युवक अवस्था से बुढ़ापा, और खास करके 40-50 के बाद शरीर घटता जाता है धीरे धीरे, ऐसे 30-40 तक शरीर बड़ा होता जाता है बचपन से, और 40-50 के बाद शरीर ऐसे घटता जाता है, और ऐसे घटते जाता है, अचानक एक दिन खत्म हो जाता है वो। इसको क्षर बोलते हैं। क्षर का ये दो लक्षण है, धीरे धीरे घटने वाला, अचानक अप्रस्थान होने वाला, अचानक मिटने वाला, ऐसे इसको क्षर। और अक्षर का मतलब है जो भगवान के साथ पहचाने वाले जीव जो हैं, जो अपने आप को अपने में और भगवान में वो गुणात्मक रूप से हम एक हैं, ये जानने वाले कूटस्थ ऐसे। अभी देखिए कड़ीसाकर जो है उसको तोड़ा निकालो, ये और ये बड़ा कड़ीसाकर वो गुणात्मक रूप में एक है, करते ना, दोनों में मीठापन है, दोनों में मीठापन है, उसका ही गुण ऐसे होता है वो। इस तरह आत्मा भी भगवान का एक अंश है। जैसे एक चिंगारी होता है आग से निकलने वाला है, जो चिंगारी निकलता है जब तक आग से जुड़ा रहता है तब तक उसका भी गुण आग जैसे ही होता है, लेकिन अगर चिंगारी वो आग को छोड़कर थोड़ा दूर चला जाएगा, अगर ये एक पानी के अंदर गिर जाएगा तो मिठी जाता है वो, लेकिन एक भूमि के ऊपर गिरेगा तो रहेगा लेकिन उसका गुण कम हो जाएगा उसका, लेकिन ये एक सूखा घास के ऊपर गिरेगा तो करके वो और बढ़ बढ़ जाएगा। इस तरह हम भी आत्मा जो है हम भगवान से जुड़े रहते हैं, हमारे अंदर भी दिव्य गुण भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं, लेकिन हम जितना भगवान से हम दूर जाते हैं तभी ये तीन गुण पकड़ते हैं हमको। अगर तमोगुण पकड़ा तो पानी जैसा है, चिंगारी पानी में गिरेगा तो क्या मिठी जाता है ना। इस तरह जो तमोगुणी व्यक्ति के अनेक आदतें होते हैं, जैसे निद्रा आलस्य प्रमाद बोलते हैं ना गीता में, इस तरह ऐसे जीव गंदे गंदे आदतों में फंस जाते हैं, वो बहुत बड़े आलसी बन जाते हैं। और इस तरह प्रमाद का मतलब है वो जो निंदनीय चीजें हैं उन चीजों में वो रमता है, वो ऐसे वो मनुष्य होकर भी जानवर से भी नीचे गिर जाता है ऐसे। तो इस रजोगुण का मतलब है रजोगुण के लोग भाग दौड़ करते हैं लेकिन गलत दिशा में भागते हैं वो ऐसे। तो इस तरह के तीन गुण में श्रेष्ठ क्या है, सत्वगुण है। वो सत्वगुण कैसा है, जो सूखा घास है उससे तुलना किया है। तो इस तरह अगर कोई सत्वगुण में होगा, सत्वगुण में भी दो समस्या है। सत्वगुण का दो गुण क्या है, सुख और ज्ञान। अभी सुख प्राप्त हो गया, अगर कोई सुख में आसक्त हो गया कोई व्यक्ति उसके कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे कंप्लेसेंट हो जाएगा। और से कंप्लेसेंट शिथिल हो जाएगा वो अपने धार्मिक कर्मों में, क्योंकि सुखी है ना इसलिए। और इस तरह अगर कोई ज्ञानी बन गया तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा उसको। तो सुखी बनने वाला आसक्त हो जाता है, ज्ञानी बनने वाला अहंकारी हो जाता है, और आसक्ति और अहंकार दोनों रजोगुण के लक्षण है। इस तरह से सत्वगुण से कोई व्यक्ति उतर जाता है नीचे, किसमें, रजोगुण में उतर जाता है व्यक्ति। इसलिए सत्वगुण को भी बताया गया कि सत्वगुण में भी इस दुनिया में शुद्ध सत्वगुण मिलना बहुत दुर्लभ है, उसमें रजोगुण और तमोगुण का मिलावट हमेशा रहता है उसमें। लेकिन सत्वगुण में आकर उधर से एक व्यक्ति को शुद्ध सत्व में की ओर जाना चाहिए। उसका मतलब है शुद्ध सत्व मतलब है हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को सुनना चाहिए, और भगवान के गुणा भगवान के सुंदर कल्याण गुणों के बारे में रमना, उसमें रमण करना, दूसरों को समझाना, कुछ भी समझना, और उन गुणों को हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए तभी इस तरह। और इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान विविध का विविध लोगों के साथ कैसे पेश आया है, ये सब समझने से। तो इस तरह शुद्ध विशुद्ध सत्व जो है वो वैकुंठ का स्तर है। वैकुंठ में किसी भी तरह का दोष नहीं है, वो निर्दोष है वो उस स्तर पर। लेकिन इस दुनिया में विशुद्ध सत्व के स्तर पर रहने वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं। भगवान के एकदम शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो तीन गुणों से परे हैं, जैसे भगवान कहते हैं माम चियो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीन गुणों से परे रहकर शुद्ध जीवन जीने वाले ऐसे, तो वो ऐसे स्तर है। उसको तुलना किया है 24 कैरेट गोल्ड से, 24 कैरेट का गोल्ड होता है मालूम आपको, कुछ कुछ लोगों को मालूम नहीं कि क्या है कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड मालूम है। अगर आपके पास कैरेट है तो आपको मिलेगा नहीं सोना, सोना के लिए क्या है लाखों रुपये जरूरत पड़ेगा। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब वो एक स्टैंडर्ड का गोल्ड है जिसमें किसी भी तरह का आभूषण नहीं बनाया जाता है, आभूषण बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतना वो क्या बोलते हैं साहब इतना मुलायम होता है उसमें। जैसे कोई बोले कि समोसा बनाना है तो उसके लिए थोड़ा इसकी जरूरत है, क्या है, मैदा की जरूरत है, मैदा कुछ आइटम है। अगर गुलाब जामुन बनाना है तो थोड़ा मैदा की जरूरत है तो पकड़ेगा वो, करेक्ट है ना, नहीं तो कभी कभी वो ये नहीं होता वो। इस तरह से वो 24 कैरेट गोल्ड में थोड़ा मिश्रण करने से, रजोगुण का मिश्रण करने से, तो इस दुनिया में दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन चलता है सब देवताओं का, सब देवता 33 कोटि देवता तो चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अगर शुद्ध सत्य में करेंगे तो मैनेजमेंट ही नहीं होगा उसमें, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या नहीं है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है उधर, सब भगवान ही, भगवान केंद्र बिंदु है सबके लिए। उधर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ऐसे कार्य होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्या ये करती है, योग माया करती है, सब एकदम सुंदर तरीके से चलता है उधर ऐसे। लेकिन भौतिक दुनिया में भगवान ने 33 कोटि देवताओं को रखा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने रखा है, और इस दुनिया में सब चीजों को चलाने के लिए देवता लोग किसमें रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन सत्वगुण में हमेशा नहीं रह पाते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, जब इंद्र आकर भगवान कृष्ण के पांव पकड़ा था, बोला था उन्होंने द्वारका में, हे भगवान मेरे माता आदित्य की कुंडल उठा कर ले गया ये नरकासुर ने, और इस तरह वरुण का भी छत्री चला गया। तो भगवान ने सोचा, अच्छा ये देवताओं के भी सामानों को चोरी किया है नरकासुर ने, इतना ही नहीं इतने हजारों हजारों कन्याओं को उठाकर लेके अपने जेल में रखा है उसने। तो भगवान ने सोचा कि अभी इसका इसका क्या बोलते हैं उसको, नहीं इसका अंत नहीं, हिज अट्रॉसिटीज हैव नो लिमिट, व्हाट इज अट्रॉसिटीज, अत्याचार, अत्याचार इज डिफरेंट, अट्रॉसिटीज अत्याचार ओनली, अट्रॉसिटी श्योर, ठीक है इसका अत्याचार का अंत ही नहीं है अभी, ठीक है अभी इसको खत्म करना पड़ेगा। तो भगवान जाते हैं, लेकिन भगवान को एक शंका है कि कैसे इसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो किसका बेटा हो, भूमि का बेटा है, और भूमि किसकी विस्तारित रूप है, सत्यभामा की, अगर मैं उसको मारूंगा तो सत्यभामा चिल्लाएगी, अरे क्या तुमने अपने बेटे को ही मार दिया, ऐसे बोलेगी वो। सत्यभामा की विस्तारित रूप है भूदेवी, भूदेवी की बेटा है, इस तरह जब भगवान वराह के रूप में आते हैं, वराह और भू उनके संपर्क से भौमासुर, लेकिन वो असुर बनाता वो, असुर बनकर बहुत तरह तरह के तकलीफ दे रहा था। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है सत्यभामा को ही बिठा कर लेके गए गरुड़ जी में, बिठा कर ऐसे चले गए, उसको क्या बोलते हैं प्राग ज्योतिषपुर बोलते हैं उसको, प्राग ज्योतिषपुर में चले गए। तो उधर जाकर उन्होंने, वो बहुत बड़ा लंबा कथा है, लेकिन उसमें जब युद्ध हुआ भगवान और भौमासुर के बीच में, भौमासुर ने ऐसे तरह तरह के आयुधों को चलाया भगवान के ऊपर, भगवान ने वापस लड़ा नहीं, वेट कर रहे थे सत्यभामा के लिए। सत्यभामा ने देखा, बोला कि क्या देख रहे हैं आप, मार डालिए उसको, ठीक है तुम्हारा परमिशन मिल गया, थैंक यू, मार दिया भगवान ने ऐसे, इसलिए लेके गया था भगवान ने उनको, कितने बुद्धिमान ने देखे भगवान, नहीं तो बोलेंगे कि मार दिया हमको पूछे बिना मार दिया आपने, ठीक है मैं पूछूंगा ही नहीं, आप ही बोलो जब बोलेंगे तब मारेंगे हम। तो ठीक है उनको मार दिया, उधर से लेके गए वो वरुण, वरुण के छत्री और अदिति के कुंडल। जब भगवान गए इंद्र के पास, अदिति को दिया और वरुण को दिया, इंद्र और सची सब लोग आकर भगवान के पदकमलों को धोया और पूजा किया सब, ठीक है सब भगवान ने प्रसाद वगैरह लिया सब, अब निकलना था, निकलते समय भगवान ने उनको बगीचे में लेके गया, उधर पारिजात का पेड़ था, भगवान ने बोला देखो सत्यभामा तुमको बोला था मैंने पहले पारिजात का पेड़ दूंगा, तो उखाड़ कर भगवान ने उसके हाथ में दे दिया सत्यभामा को। सत्यभामा को बहुत आनंद आया, उसने सोचा कि हम अपने महल में लगाएंगे उसको। देखिए पारिजात पेड़ में जो फूल रहते हैं उसमें इतने शहद रहते हैं, इतना मधुर होता है वो, जब भगवान गरुड़ में सवार होकर सत्यभामा को भी लेकर जाते हैं पारिजात के साथ, वो स्वर्ग में रहने वाले भ्रमर पारिजात पेड़ के साथ साथ वो भूमि में आ गए वो भी, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाए उसको, इतना सुगंध रहता है उसमें। लेकिन जब वो भगवान निकल रहे थे तभी इंद्र के पत्नी और बाकी देवताओं ने बोला इंद्र को, अरे इंद्र तुम्हारे बगीचे से उखाड़ कर लेके जा रहे हैं एक पेड़, क्या कर रहे हो तुम तो स्वामी हो इंद्रपुरी का, और ये कोई लेके जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्या तुमको तुम्हारे पास शक्ति नहीं? तो इंद्र तुरंत सब देवताओं को लेकर भगवान के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है, लड़ाई शुरू कर दिया उसने, बाण चलाने लगा। लेकिन भगवान एक क्षण में झुंक करके आ गए भूमि में, सबको पराजित करके ये एक क्षण में आ गए भगवान द्वारका में ऐसे। लेकिन उधर शुक्रदेव गोस्वामी उस श्लोक में बता रहे हैं कि हे भगवान, ये देवताओं की स्थिति देखो कितना बिगड़ गए हैं ये लोग, आपके पांव पकड़ा, आपकी पूजा किया जब आपने कुंडल अदिति का कुंडल दिया, अभी आपके आपके साथ ही लड़ाई कर रहे हैं ये पारिजात लेके जाने के लिए। अभी एक क्षण के पहले इनको मालूम था कि आप उनके स्वामी हैं, अभी एक क्षण के बाद भूल गए सोच रहे कि वो खुद ही स्वामी हैं और आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं, धिक्कार है इन देवताओं की, ऐसे बताते हैं कौन सुखदेव गोस्वामी ऐसे भागवत में ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है, दुनिया में लोग बुलक्कड़ हो जाते हैं, अपने असली स्थिति को भूल जाते हैं। हमने बहुत सालों के पहले एक कहानी सुनी थी, एक बार एक शेर और शेरनी, उनका एक छोटा बेटा हुआ, तो ये शेर और शेरनी अपने छोटे बच्चे के साथ कहीं तो किसी गांव में गए थे कुछ बकरों को पकड़ने के लिए। तो उस समय ये जो उनका छोटा बेटा था वो भी बकरों के साथ भाग गया, वो जब बकरे भाग गए वो भी उनके साथ भाग गया। तो पिताजी पिता शेर ने पूछा माता शेर को, किधर है वो? वो बोल रही मैंने सोचा आपके पास है। वो बोला कि मैंने सोचा तुम्हारे पास है। अरे हम दोनों के पास नहीं है। कभी कभी ऐसे हो जाता है बच्चों का, पिताजी सोचता है कि बच्चा माँ के साथ है, माँ सोचती है पिता के साथ है, और दोनों इधर रहते हैं, बच्चा कहीं गुम जाता है वो। इस तरह वो गुम गया बच्चा। तो वो लोग जंगल में चले गए, दुविधा में पड़ गए किधर गया, वो ढूंढ रहे थे उसको। लेकिन माता ने बोला कि हो सकता है वो बकरों के साथ चला गया हो, आप और एक बार जाकर ढूंढिए, बकरों के बीच में कहीं तो रहेगा वो। तो इतने में क्या हुआ, ये छोटा शेर आया था बकरों के बीच में, बकरों ने देखा कि ये क्या नया दिख रहा है, इसका चेहरा अलग है हमारा अलग है, इसका शक्ल देखो कैसा है हमारा कैसा है देखो। फिर भी उन्होंने उसको सिखाया कैसे आवाज करने का, मैं आवाज करते ना ऐसे, तो उसको सिखा दिया वो लोगों ने। वो भी था शेर वो, लेकिन कर रहा था आवाज किसके जैसे, बकरा जैसे आवाज कर रहा था, जो बकरे जो कहते थे वो भी कहता था, तो उनके साथ ही रहने लगा वो। तो जब पिताजी शेर अचानक टूट पड़े वो बकरों के बीच में ढूंढने के, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, देख लिया कि है इधर ही है, उनके साथ है, लेकिन उसके पीछे भागे, लेकिन वो सब बकरों के साथ वो भाग गया। बुलाए पिताजी ने, अरे मूर्ख हमारे साथ आ जाओ। वो बोला कि बकरे भाग रहे हैं मुझे भागना पड़ेगा सब, क्योंकि हम उनका फ्रेंड बन गया, उनका निकट मित्र बन गया, वो भी भाग गया। तो पिताजी वापस लौटे, बोला है उधर ही है वो, लेकिन आ नहीं रहा क्या किया जाए। माता ने बोला क्या नहीं आ रहा, पकड़ कर ले क्या उसको, छोड़ना नहीं उसको, इस तरह बोला। ठीक है, अगली बार सोचा इन्होंने, अभी बकरी पकड़ना नहीं है, किसको पकड़ना है, हमारे बेटे को पकड़ कर लाना है बस। इसलिए अगले बार जब पिता शेर गया उसको पकड़ा, ऐसे गला जब पकड़ा वो आवाज किया कैसे, मैं ऐसे बकरा जैसे आवाज कर रहा था वो। पिताजी बड़ा आश्चर्य, क्या हो गया इसका बुरा हाल। तो पकड़ कर उसको लेके आए अपनी पत्नी के पास, पत्नी ने बोला है आइए। तो माता और पिता दोनों गए एक तालाब, तालाब के पास वो तट में बैठे हुए, इसे चेहरा दिखाया उसको, देखो तुम्हारा चेहरा कैसा है। तो एक ओर देखा पिताजी का था बड़ा चेहरा था, दूसरी ओर देखा माता जी का था, और बीच में अपना देखा, अरे हमारा मिलजुलता है इन लोगों से। ये वो बोला कि हमारे बकरे जैसे दिखता है, वो बोला तुम बकरा नहीं हो पहले समझो, तुम कौन हो, तुम शेर का बेटे हो, शेर स्लाइस आवाज करो, ऐसा बोला भाली बोल, ऐसा बोला वो भी है। तभी उसको आवाज सही आ गया उसको, तो बोले कि अभी निकलो, अभी हम जंगल में जाते हैं, लेके गया जो उनके लिए रहने के लिए सही स्थान है। इसका मतलब क्या है, इसमें ये जो शेर कौन है, कृष्ण है, और शेरनी राधा रानी है, और हम कौन है, हम छोटे बच्चे। इसलिए किसने बोला कृष्ण को पकड़ कर लेके आओ, राधा रानी ने बोला है, इसलिए हम राधे जी का आश्रय लेते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ ड्राइविंग पकड़ समाज बोल, अब वो बोलते हैं कि उधर ही है वो भटक रहा है दुनिया में, पकड़ के लेके आओ। वो कृष्ण बोलेंगे आ नहीं रहा, पकड़ के लेके आओ उसको, छोड़ा मत उसको। तो इस तरह से समझ गया वो अपने असली स्थान। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभम दत्ते स्वे महिम्नी स्थितस्य च। इसे कपिल बताते हैं, भुक्त भोगा परित्यक्ता, इस दुनिया के भोग विलास को त्याग कर दृष्ट दोषा च नित्यशः, अपने दोष को एक जीव समझ जाता है, मैं भोगी नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद ही स्वामी हूं, मैं भगवान का दास हूं, यह बात समझ लेता है कोई जीव। ये समझ गया तो क्या होता है, न ईश्वरस्य अशुभम दते, अपने आप को ईश्वर समझना क्या है, वो अशुभ है, उसको छोड़ देता है वो। स्वे महिमनी स्थित का मतलब है अपने असली महिमा की जो स्थिति है, जिसमें आत्मा भी भगवान जैसे चमकता है, उस स्थिति में आ जाता है। जैसे सृष्टि के शुरुआत में जब भगवान गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से कमल उगता है ना, उस कमल जब ऐसे खिल उठता है, ऐसे उस कमल के अंदर कोटान कोटि जीवराशियां डायमंड जैसे चमक रहे हैं उधर, जैसे रात को जुगनू चमकता है ना, ऐसे वो जब खुलता है ऐसे कमल, उसमें ऐसे जीवात्माएं चमक रहे हैं ऐसे है? तो उन जीवात्माओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा जो होता है ब्रह्मा, वो जीवात्मा उधर से निकलकर उसको ब्रह्मा का शरीर आकार प्राप्त हुआ उस समय। और भगवान विष्णु ने बोला ब्रह्मा को, देखा देखो ब्रह्मा, तुमको मैं ज्ञान दूंगा पहले, लेकिन ये सब जीवात्माओं को संभालना तुम्हारा काम है, इनको लेकर सबको शरीर दे दो, सबके लिए लोक दे दो, अलग अलग लोगों को बोल दो कि तुम स्वर्ग लोक में जाओ, तुम नरक में जाओ, तुम अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थान में उनके गुणाधीशों के अनुसार भेज दो, कोई रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुणी है, उनको अलग अलग लोकों में भेज दो, उनको शरीर देना, उनको रहने का व्यवस्था करना है, उनको नाम देना, ये सब करना तुम्हारा काम है, इस तरह प्रजा उत्पत्ति करना तुम करो ऐसे। तो मैं क्यों बोला ये उदाहरण आपको, वो कमल के अंदर जो चमक रहा था जीवात्माएं, मतलब जिस तरह भगवान चमकते हैं ऐसे जीवात्मा भी चमकता है, क्योंकि गुणात्मक रूप से एक है जीवात्मा, भगवान बड़े हैं हम छोटे हैं, लेकिन जैसे कभी कभी हमें देखने को मिलता है मार्केट में जाते हैं, कभी देखते हैं कि पिताजी जो है वो जैसे ब्लैक पैंट पहने हैं और ब्लू शर्ट पहने हैं, तो उनके छोटे बेटे को भी ऐसे ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट पहनाते हैं कभी कभी पिताजी, आपने देखा है ऐसे, वो जो पहनते हैं वो बड़े पिताजी बड़े हैं और बेटा छोटा है, लेकिन उनके जैसे ही कलर का कपड़ा पहनता है वो भी ऐसे, कभी कभी माता और बेटी भी पहनती है कभी ऐसे, कभी कभी तीन बहन एक ही कलर का पहनती है, क्योंकि वो एक ही परिवार के होते हैं ऐसे। इस तरह हम भी देखा जाए तो भगवान जिस तरह रोशनी निकलता है भगवान के शरीर से, इस तरह जीवात्मा के शरीर भी रोशनी निकलता है, ये भी लेकिन अंश है, लेकिन ये भी स्वे महिमनी स्थितस्य च बताते हैं ऐसे। जब सूर्य गिरता है ये गोपुरम के ऊपर, वो गोपुरम अगर सोने का हो चांदी का हो चमकता है वो भी, इस तरह भगवान के सान्निध्यता में जब जीव रहता है तो ये भी चमकता है बहुत अच्छी तरह। उसके अंदर भी बहुत अनेक दिव्य गुण होते हैं, जैसे भगवान को सूर्यदम सर्वभूतानाम बोलते हैं ना, जीवात्मा को भी सूर्यदम बोला गया है, सूर्यदम सर्वभूतानाम, जैसे तितिक्षवा कारुणिका सूर्य सर्वदेहिनाम, ये सब बताया गया है किसके लिए, भगवान के लिए नहीं है, सब जीव के लिए बोला गया है, लेकिन ये सब गुण भगवान में भी आप देखेंगे ऐसे। तो इधर बता रहे हैं भृगु कि हे भगवान, इस दुनिया में ब्रह्मा भी हो, शिव जी भी हो और बाकी भी जीवराशियां हो, वो सब छोटे मोटे होते हैं, वो सब भी इस दुनिया में ये द्वंद्व में पड़ जाते हैं। द्वंद्व का मतलब है उनके ऊपर जब शरीर का आवरण आता है वो बुलकड़ हो जाते हैं, जैसे वो शेर का बेटा क्या सोचा अपने बारे में, बकरा सोचा है ना, इस तरह हो जाते हैं। इसके कारण अपने असली स्थिति को भूलकर इस दुनिया में शरीर से पहचानने के कारण वो विविध तरह के गलतियां करते हैं जीव है। तो ये क्यों बोल रहे हैं भृगु ऐसे, देखिए दक्ष प्रजापति गर्व के व्याधि हो गया उसको, गर्व से पीड़ित उसने शिवजी की निंदा की एक बड़ी सभा में ऐसे, क्योंकि वो एक तरह का नशा चढ़ गया था उसके सर के ऊपर, उसने सोचा कि जैसे अगर किसी के पास ऊंचा जन्म, ऊंचे कुल का कुल में जन्मा हो कोई, कोई धनी खानदान में जन्मा हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, कोई किसी के बहुत प्रभाव है लोगों के ऊपर, बहुत मशहूर व्यक्ति हो, जगत प्रसिद्ध व्यक्ति हो कोई, इस तरह अगर किसी के पास कुछ ना कुछ ये क्षमता आ जाता है एक व्यक्ति के पास, वो एक तरह का नशा हो जाता है। उस नशे के कारण वो पर निंदा करता है, नहीं तो पर जीवों की निंदा करता है, जैसे महान पुरुष शिव जी की निंदा की उन्होंने, तो वो एक उदाहरण है ये जो बोल रहे हैं भृगु इसका। और इस तरह शिव जी भी कुपित हो गए थे। उसके बाद दूसरी बार जब दक्ष प्रजापति के महल में ये जो वाजपेयी यज्ञ चल रहा था उसमें नहीं गए थे शिव जी, लेकिन कौन गई थी, सती गई थी। लेकिन सती का जब अंत हो गया, देहांत हो गया, तभी शिव जी ने सोचा कि देखो अगर मेरा निंदा किया तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन सती के साथ उसके पिताजी ने ऐसे दक्ष ने ऐसे बर्ताव की है कि सती ने अपने आत्महत्या कर ली, अपने आप को जलकर राख बना लिया उन्होंने, तो इसके कारण शिव जी बहुत कुपित हो गए। तो उन्होंने एक इशारा कर दिया अपने सब वीरभद्र और बाकी लोगों को। वो इशारा करने के कारण भृगुमुनि ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि एक इशारा ना जाने से वो लोग ये सब नहीं करेंगे, एक हाथ हिलने से सब हो जाता है ना, क्योंकि वो लोग तो किसके, शिव जी के दास गुलाम है ना, शिव जी के दास है ना वो सब लोग। शिव जी बोलेंगे ठीक है माफ कर दो दक्ष को, तो माफ कर देते थे। लेकिन शिव जी ने सोचा कि ये जो किया है दक्ष ने किया है इस तरह, उसका अहंकार एक स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब इसको ऑपरेशन करना है उसको। जैसे कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, जो बॉयल बड़ा हो जाता है उसको निकाल देते हैं ना, उसको पस को निकाल देते हैं इसे। इस तरह शिव जी ने सोचा कि अभी इसके लिए दंड योग्य है, ये दंड देने से ये सुधरेगा, वो नहीं तो सुधरने वाला नहीं है ये। ऐसे शिव जी ने उसको दंड देने के लिए वीरभद्र और बाकी लोगों को इशारा कर दिया, और वो बोले क्या हल्ला गुल्ला मचा दिया वो लोगों ने, आपने पढ़ा होगा पहले है ना, वीरभद्र ने ऐसे उनके गर्दन पकड़ कर काट दिया, और कोई जो हंस रहा था अपने 32 दांतों को दिखाते हुए उसको क्या किया, फाट करके मारकर उसको सब दांतों को तोड़कर हाथ में दे दिया उसको, है ना ऐसे है। तो भागने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा उसने। तो भारत में कभी वीरभद्र का भी मंदिर होता है, कुछ लोग ये करते हैं पूजा करते हैं, क्योंकि वो गुंडा जैसा है तो इस तरह मारा मारी करता है, वो सब होता है। उसके बाद ये थोड़ा सुधर जाता है, कौन हमारे दक्ष प्रजापति और उसके अनुयायी थोड़ा थोड़ा डंडे बढ़ जाते हैं उसके बाद, क्योंकि वो अहंकारी पुरुष था। तो इस तरह क्या होता है दुनिया में देखेंगे, ये प्रभुपाद जी एक सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि पहले जीव क्षुद्र अवस्था में होते हैं, तभी उनके अंदर इनसिक्योरिटी होता है। क्या होता है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, दैट इज इन प्रोटेक्शन, लैक ऑफ प्रोटेक्शन इज असुरक्षा। इनसिक्योरिटी मीन्स इज नॉट फीलिंग एक्सपीरियंस ऑफ नॉट हैविंग शेल्टर। इनसिक्योरिटी मीन्स किसी और की महत्ता को देकर जलना, समझा ना आपने। वो जीव सोचता है कि देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धिमान है, कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, देख हमको हमारा क्या होगा, हमको कोई देखेंगे नहीं, हमको कोई सुनेंगे नहीं, तो इस तरह से अपने में कमी को महसूस करना, और दूसरों में जो बड़ापन है उसको देकर वो जैसे बनने के लिए प्रयत्न करना, ये सब जीव करते हैं दुनिया में। इसके कारण उनको लोनलीनेस महसूस होता है, डिप्रेशन महसूस होता है दुनिया में, इस तरह होता है। तो जब इस तरह देखिए, ये जो सीआर होता है गांव में, हम लोग जब पॉलिटेक्निक जाते थे साइकिल में, रात को वापस लौट आते थे, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता था स्कूल से, कभी 7:30 ऐसे, तो लेट आते समय हमको अनेक लोग बोलते थे कि थोड़ा सावधानी से जाना, क्योंकि वो हम एक जंगल मार्ग से जाते थे तो उधर सीआर लोमड़ी बोलते हैं, सीआर बोलते हैं, वो आवाज करता था, बड़ा बड़ा आवाज करता था वो। तो वो सीआर क्या करता है, अगर कोई आता है साइकिल में आता है कोई आता है, तो वो सोचता है कि मेरे मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है वो, तो क्या करेगा वो, थोड़ा मूत्र करेगा भूमि में, उसका से मिलाकर फट करके चेहरे के ऊपर फेंकेगा वो, तभी लोगों के आंख अंधा हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, अगर सियार को देखा तो उसको भगा जाना चाहिए पहले, निकट ही नहीं जाना चाहिए उसको। अगर आप भगाए तो भाग ही जाएगा वो, नहीं भागेगा, थोड़ा केयरलेस कोई रहता है तो ऐसे वो करते हैं। तो इनसिक्योर लोग ऐसे करते हैं, देखा ना आपने, समझे ना आपने। इनसिक्योर मतलब है खुद की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों के आंखों का अंधा करना, ऐसे ऐसे इनसिक्योर है। तो इस दुनिया में भी इस तरह का काम भी लोग करते हैं ऐसे। और बाकी लोग हैं जो बड़े नायक बोलो, खलनायक बोलो, जो भी बोलना हो, तो उनके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ तो क्षमता है, बहुत पैसा है, तो बड़े बुद्धिमान है, ऊंचा कुल में जन्मे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाले लोग हैं, बोलचाल में बड़े निपुण हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सब लोग मानते हैं कि ये बड़े हैं। सब लोग बोलते हैं कि ये स्थिति इसमें देखा जाए तो अथॉरिटी है, इस तरह बोलते हैं। अथॉरिटी मतलब इस फील्ड में कोई नहीं है, इस तरह लोग मानने वाले। तो वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा बड़े होने के बाद उनके उनसे नीचे होने वाले जीव जो होते हैं उनको मजाक उड़ाते हैं, उनको मजाक उड़ाना, उनके सर के ऊपर चढ़ जाना, कंधे के ऊपर चढ़ जाना, ऐसे वो करते हैं। और वो एक चीज़ करते हैं, दूसरा चीज़ क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे समक कोई दूसरा आ गया तो उसके साथ स्पर्धा करके उसको पराजित करना चाहते हैं। जैसे दो भाई थे, सुंड उपसुंड नाम के दो भाई थे, दोनों भाई इतने अत्याचार करते थे सारे दुनिया में। प्रॉब्लम क्या था, अच्छा कोऑपरेशन करते थे, कोऑपरेशन के साथ सब लोगों को अत्याचार करते थे दुनिया में। लोगों ने सोचा कि अरे ये दो भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों साथ में आकर दुनिया को सता रहे हैं। तो ब्राह्मणों को सताते थे, गायों को मारते थे, स्त्रियों का अपहरण करते थे, सब करते थे ऐसे। तो सब लोग देवता जाकर बोले ब्रह्मा जी को, इनको क्या किया जाए, ये लोग सारे दुनिया में अत्याचार मचा रहे हैं। ब्रह्मा बोले कि चिंता मत करो, तिलोत्तमा नाम का एक सुंदर स्त्री को सृष्टि करके उन्होंने भेजा। जब तिलोत्तमा ऐसे एक नूपुर पहनते हुए चल रही थी, चल 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 ऐसे चल रही थी, तो उन्होंने देखा अरे क्या सृष्टि ब्रह्मा ने किया है, कितना सुंदर। तो सुंड उपसुंड को बोल रहा कि देखो तुम्हारे भाभी चल रही है। वो बोला किसका भाभी है, तुम्हारा भाभी है, मेरा भाभी नहीं, मेरा पत्नी और तुम्हारा भाभी। ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो दोनों ने बोला कि ठीक है, हम क्यों झगड़ा करें, हम तो पहले से अच्छा कोऑपरेशन करते आए हैं। उसके पास जाकर पूछेंगे, उसको वो छुनने दे। तो तिलोत्तमा को पूछा, आप छुन लो, हमारे में किसके साथ शादी करना है तुम्हारा। वो बोली तुम दोनों झगड़ा करो, जो बचेगा उससे शादी करूंगी मैं, ऐसे बोला उसने, बुद्धिमान है। दोनों ऐसे झगड़ा किया, हड्डी पसली मारा एक दूसरे को, ऐसे दोनों मर चल बसे, दोनों मर गए दोनों। सब देवता ताली बजाने लगे, अच्छा हो गया अभी, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की थी ऐसे। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में कभी कभी लोग बड़े हो जाते हैं। जैसे एक ये जो रावण जो था, वो गया था एक नदी के तट में भोग विलास करने के लिए ऐशाराम के साथ, लेकिन अपने पार्टी अपने लोगों को लेकर गया था, अनेक मिनिस्टर लोगों को, स्त्रियों को, सबको लेकर गया था उधर। जैसे लोग कभी कभी पिकनिक के लिए जाते हैं, वो भी पिकनिक के लिए गया था वो। लेकिन वो नदी के उस बाजू में एक कार्तवीर्य जो नाम का हाया हाय बोलते हैं उसको, हाया है, तो वो जो था उसके पास हजारों हाथ था और हाथों में खुजली होता था उसको, क्या कोई लड़ने के लिए कोई नहीं इस दुनिया में हमको, बहुत ज्यादा उसका रजोगुण ज्यादा हो गया उसका। तो उसने ऐसे नदी के बीच में जाकर ऐसे पूरा नदी का प्रवाह को रोक दिया उसने, जिसके कारण नदी इतना बहुत बड़ा बाढ़ आ गया नदी में, पूरा रावण का पूरा टेंट पार्टी सब पानी में गया वो। सब रावण चिल्ला रहा था, अरे कौन रोक रहा पानी को, पकड़ो उसको, मारो उसको। तो मारने के लिए वो तो कार्तिकवीर्य के पास हजारों हाथ है, रावण किधर उसके सामने, रावण पकड़ा गया आसानी से। इस तरह दुनिया में एक व्यक्ति बड़ा, रावण तो छोटा व्यक्ति नहीं है, बड़ा व्यक्ति है, लेकिन बड़े के सामने और भी बड़े लोग होते हैं ना इस दुनिया में। तो इस तरह बड़ों के बड़े बड़े लोगों के बीच में इस दुनिया में स्पर्धा होता है। वो सोचते अभी देखा जाएगा कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं तुम बड़ा हो, ऐसे वो लोग करते हैं, स्पर्धा करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, इस दुनिया में ये फिर रावण ने बोला कुबेर को, उनके ही भाई था वो, कुबेर को क्या किया उसने, उसकी चोरी कर लिया उसका पुष्पक विमान को, उसको बगा दिया और उसके पुष्पक विमान चोरी कर लेके आ गया। तो रावण ने अनेक लोगों से अनेक चीज अपहरण करके लेके आया, उनको दमन करके लेके आया, लेकिन अभी उसको दमन कर दिया किसने, कार्तवीर्य अर्जुन से। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया किसने, परशुराम ने बाद में। यह दुनिया का यही स्थिति है। तो एक बड़ा व्यक्ति दूसरे को मारेगा, और तीसरा व्यक्ति आएगा दूसरे को मारेगा वो, और चौथा आएगा तीसरे को मारेगा वो, और ये चलता रहेगा। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, अरे हिटलर के बारे में किताबें लिखे हैं, लोग पढ़ते हैं उसको। प्रभुपाद बोला अरे काम का नहीं है, हिटलर के बारे में क्यों पढ़ते हो, हिटलर को जो मारा उसके बारे में पढ़ो। हिटलर को किसने मारा, भगवान ने मारा, इसलिए भगवान के बारे में समझो। प्रहलाद ने बोला भगवान नरसिंहदेव को, हे भगवान मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु क्या शक्ति था इनके अंदर, मैंने खुद देखा है अपने ब्रुगटी, ब्रुगटी बोलते हैं इसको, ब्रू, अपने ब्रुगटी को हिलाकर उन्होंने सब देवताओं को अपने काबू में रखा था उन्होंने। जब वो ऐसे ब्रुगटी को हिलाते थे सब देवता गिड़गिड़ाते थे, अपने मुकुट निकाल कर नीचे रख देते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, पूछते थे हाथ जोड़कर, राजा बोल दीजिए क्या करना है, बोलते थे वो भाग जाते थे ऐसे। लेकिन ऐसे हिरण्यकश्यपु को आपने पकड़कर अपने गोद में रखकर फाड़ दिया आपने, जैसे एक हाथी जो है वो गन्ने को फाड़ता है, इसे आपने फाड़ दिया। इसलिए भगवान मैं आपका शरण लूंगा, क्योंकि ऐसे बड़े इतने सारे तीनों लोकों का अधिपति जो हिरण्यकश्यपु था उसको आपने मार दिया, आपसे शक्तिशाली कौन है इस दुनिया में, तो भगवान का शरण लेते हैं इसे। तो इस तरह से इस दुनिया में स्पर्धा हमेशा रहता है, इस दुनिया में स्पर्धा किस लिए, हर एक व्यक्ति सोचना चाहता है, सोच दिखाना चाहता है कि हमारे बल कितना है इस दुनिया में, हमारा शक्ति कितना है। ये बता रहे थे हमारे गुरुजन पुआ आए थे अभी कुछ दिनों के पहले, वो बता रहे थे कि उन्होंने देखा दिल्ली में, तो एक व्यक्ति ऐसे कार में आया तो दूसरे व्यक्ति इधर से आ गया, ऐसे गली से बड़ा कार लेकर ऐसा आ गया, तो ये व्यक्ति ऐसे जा रहा था, तो गलती किसका था, इसका था नहीं तो इसका था, हाँ ये रोड में आ रहा है, सही आ रहा है वो, लेकिन इधर से घुस गया वो रोड में। लेकिन रोड में घुसने के पहले देखना चाहिए ना, देखकर जाना चाहिए, देखा नहीं हुआ ऐसा आ गया, तो इसके कार आकर थोड़ा ठोक दिया ऐसे, इसका कुछ नहीं हुआ उसका, थोड़ा ठोक दिया, तो आदमी वो ये जो ड्राइवर था मुड़कर देखा, क्या चल रहा है, अकल है कि नहीं, ऐसा पूछा उनको। तो वो ड्राइवर क्या है वो ऐसा ऐसा क्या था वो, सॉरी 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 ऐसे बोला, तो आके वो तो आगे चला गया तुरंत, कुछ पूछा नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है, दो ड्राइवर होते हैं, एक ड्राइवर कुछ बोलता है और दूसरा ड्राइवर और बड़ा आवाज करता है, और तीसरा कुछ गाली देता है और बड़ा गाली देता है, दोनों उतरते हैं कॉलर पकड़ते हैं, और ये इसका कॉलर पड़ता है उसका पकड़ता है, ये एक तमाचे था उसका तमाचे देता है, और वो उसके गुंडों को बुलाता है इसको गुंडों को बुलाता है, इसका अंत ही नहीं है इसका। कभी कभी ये दोनों बुड्ढे होने के बाद भी इसके बेटा का बेटा उसके बेटे के बेटे को मारेगा वो। आप देखिए आप दुनिया में समझ रहे आप, इसलिए बुरीजन को बोल रहे थे ये अच्छा ये इसका तनाव पेश नीचे ना ऐसे बोले वो, ऐसा किया तो ऐसा किया, वो दूसरा व्यक्ति को झगड़ा करने के लिए मौका है नहीं मेरा, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, दो हाथों से ताली बजता है, एक हाथ ताली बजने के लिए आता है एक हाथ चला जाता है, तो आवाज कैसे आएगा, है ना, इस तरह वो बता रहे थे। लेकिन इस दुनिया में स्पर्धा जो होता है जीवों के बीच में, उसका मूल कारण है मिथ्याहंकार, और मिथ्याहंकार के कारण उनको क्या लगता है, अपने शरीर से पहचानते हैं, देहात्म बुद्धि इससे। तो लोगों को क्या क्या अहंकार है, हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारे दादाजी, एक घर में एक सन्यासी गए थे, उनके घर में एक बाघ रखा था ऊपर, इसके ऊपर दीवार के ऊपर बाघ का चेहरा है, वो बोला कि हमारे दादाजी के दादाजी जो थे इतने बड़े वीर थे, शूर थे, वो उन्होंने जंगल में जाकर एक बाघ को मार कर लेके आकर उसको इधर घर में रखा है एक चिन्ह के रूप में, क्या हमारे परिवार में क्या क्या ऐसे शक्तिशाली लोग आए हैं हमारे घर में, हम लोग क्षत्रिय हैं, ऐसे बोल रहा था स्वामी को। इतने में किसी ने खिड़की को खोला, एक बड़ा कॉकरोच आ गया करके उड़ कर आ गया, उसके गोद में आके गिरा, चिल्लाते हुए भागने लगा ऐसे। तो स्वामी पूछ रहे थे, क्या छतरे हो आप, एक कॉकरोच से डरते हो आप, है ना। लेकिन लोग अपने अपने पूर्वजों के बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, पता नहीं वो बाघ का वो चमड़ा खरीदा होगा उन्होंने शायद किसी से, क्या खुद मारा है, नहीं तो करता पता नहीं। लेकिन इसको इसको देखकर पता चल जाता है किस तरह का। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, लोग अपने बारे में ही नहीं, लेकिन अपना, अपने माता पिता, अपने दादाजी, अपने जाति पाति, अपने व्हाट इज अचीवमेंट्स हैं, व्हाट इज अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, क्या क्या किया है, बग 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 बग, ऐसे अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाले इस दुनिया में उनकी कमी नहीं है इस दुनिया में। तो इस तरह से ये देहात्म बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि से हम कैसे ऊपर उठे, ये भागवत के इसमें पढ़ते हैं दशम स्कंद में, वो बताते हैं कि अभी इंद्र के माता जो है अदिति बोलती है कि ये मेरा बेटा है, सची बोलती है कि ये मेरा पति है, बृहस्पति सोचते हैं कि मेरा शिष्य है। इस तरह हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इंद्र भगवान का एक पार्षद है, भगवान का एक अंश है, ऐसे देखना चाहिए उनको, वो सही दृष्टि है। लेकिन भगवान से जुड़कर इंद्र को देखेंगे तो देहात्म बुद्धि इनको चला जाएगा। लेकिन हम देहात्म बुद्धि से हम सोचेंगे मैं और मेरा, इसे हम पहचानेंगे तो उसके कारण क्या होगा, देहात्म बुद्धि के कारण समस्या बढ़ता है इस दुनिया में। तो ये याद रखना कि हम जीव जो होते हैं, हर एक जीव भगवान के अंश है, इसे पहचानना। तो भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण वर्णाश्रम के बारे में बोलते समय बोलते हैं कि अगर किसी के हृदय में भौतिक इच्छाएं हो गुरुकुल में पढ़ने के बाद भी, तो उसको शादी करना चाहिए, पति पत्नी होकर घर लेकर गृहस्थ आश्रम को स्वीकारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनासक्ति को पैदा करना चाहता है गृहस्थ आश्रम में आने के बाद, 40-50 हो गया उनको, उनको क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ की ओर मुड़ना चाहिए ना। लेकिन वानप्रस्थ लेने के पहले उनको क्या सोचना चाहिए वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि पति पत्नी को सोचना चाहिए कि हम सब इस दुनिया में एक ट्रैवलर हैं, जैसे भी ट्रेन होता है ना, ये ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, कभी कभी लोगों के साथ बातचीत होता है, लेकिन स्टेशन आने के बाद आप उतर जाते हैं, वो उतर जाते हैं, आप अपने स्थान में जाते हो, वो उनके स्थान में जाते हैं, है ना। इस तरह इस दुनिया में भी रिश्तेदार जो आते हैं हमारे साथ, वो सब हमारे यात्रा के पार्टनर हैं, यात्रा पार्टनर, ऐसे उनको देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि ये सब भगवान के अंश हैं। अगर कोई व्यक्ति है, किसी को कैंसर हो गया, मर रहा है घर में, सब लोग रो रहे हैं, क्योंकि वो उनसे पहचानते हैं, सोचते हैं कि हमारे पिता है, नहीं तो हमारे पति है, मेरा पति है, इस तरह वो सोचने के कारण उनको दुख ज्यादा होता है। लेकिन अगर देखेंगे कि ये पुरुष जो है ये भगवान का अंश है, भगवान के साथ इनका संबंध शाश्वत संबंध है, लेकिन हमारे साथ संबंध इनका जो है वो क्षणभंग संबंध है, क्योंकि इस जन्म में संबंध है, अगले जन्म में नहीं रहेगा, वो किसी और के साथ संबंध जुड़ जाएगा वो, लेकिन किसके साथ शाश्वत संबंध है इसका, भगवान के साथ। ये याद रखना चाहिए, ये याद रखने से ये एक चीज है जिससे हमारे देहात्म बुद्धि धीरे धीरे मिटेगा। हम देखना चाहिए कि मैं भी भगवान का एक अंश हूं। अगर एक पति पत्नी है, पति को देखना चाहिए पत्नी को, ये कृष्णदास ही है और मैं कृष्णदास हूं, तो कृष्णदास और कृष्णदास ही हम दोनों कृष्ण की सेवा में लगेंगे, ऐसे वो देखते हैं तो दोनों प्रेम से रह सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं, वो माया मोह माया में नहीं पड़ेंगे, भगवान सेवा में रहेंगे। लेकिन अगर कोई सोचता है पुरुष ये मेरा दासी है, और वो पत्नी सोचे ये मेरा दास है, दोनों सोचते हैं, वो पत्नी बोलते है पैसा लेके आओ तुम जाओर ज्यादा, और वो पति बोलता है तुमको, तुम मेरा बो करने के लिए मशीन हो, इस तरह वो देखते हैं, तो उससे क्या होता है, समस्या बढ़ता है घर में, करेक्ट है ना। इसलिए ये क्षणभंगुर देह जो है ये तो मिटने वाले देह है, इसको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, इसलिए उसको हमारे जीवन को सरल रखने के लिए बार बार बोला गया है कि ये बात याद रखो कि ये शरीर टेम्पररी है। और जिस तरह हम रात को सपने देखते हैं, देखिए अगर आप रात को सोते सोते आपने देख लिया कि आपके सामने एक बड़ा प्लेट है, उसमें पुलाव है, कड़ी है, रसमरेख है, गुलाब जामुन है, पूरन पोली है, और लेमन राइस है, ये राइस वो अलग अलग वेराइटी के हैं, सब रखा है, सोन पापड़ी है। तो आपके जिगवा में ये बड़ी से चलाई वसलाई आपको लग रहा है अभी अभी अब खाने ही वाले हैं ऐसे, ये पहले आप सोच रहे हैं किसको खाने का, पहले अभी क्या कहा, ठीक है पहले गिरिराज सोन पापड़ी खा लेते हैं, ऐसे सोन पापड़ी को लेते हैं हाथ में, ऐसे आते हैं अब आंख खुल जाता है, देखते हैं कि अभी कुछ नहीं है सामने है। क्यों, क्या था वो सपना था वो, जिस तरह वो सपना में बड़ा प्लेट मिला आपको, ऐसे ही ये दुनिया भी एक सपना ही है जीव के लिए, क्योंकि हम आए हैं रहते हैं 60-70 साल रहते हैं और छोड़ देते हैं चले जाते हैं इस दुनिया में, क्योंकि जागृति स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों में जब जीव भोग करने के लिए प्रयत्न करता है, ये एक सपना के ही बराबर है। असली स्थिति है क्या है, तुरिया चौथा स्टेज है समाधि है, तो भगवान परमात्मा समाधि के स्तर पर रहते हैं, हमको भी उस स्तर पर आना चाहिए, और समाधि के स्तर पर रहकर जब हम देखेंगे आत्मा परमात्मा का संबंध जान जाएंगे हम हैं, और देखेंगे कि ये सब भौतिक पदार्थ जिनके बीच में हम उलझ रहे हैं वो हमें सुखी नहीं करेंगे हमें हैं। तो इधर भृगु जो बोल रहे हैं ब्रह्मा से, अपने आप को भी वो बोल रहे हैं कि मैं भी माया मोह माया में पड़ता हूँ, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि बार बार जीव को भगवान के निकट जाना चाहिए, चिंगारे जितना आग के निकट जाएगा उसको आग का गुण आ जाएगा उसमें, चिंगारे जितना आग से दूर जाएगा उतना मिट जाएगा, इसलिए हमको भगवान के पदकमलों की ओर अग्रसर होना है, भगवान के नाम जपना, भगवान की कथा श्रवण करना, भक्तों के संग में रहना, सेवा करते रहना, बार बार प्रार्थनाएं करना भगवान से, हे भगवान हमको ऊपर उठाओ, हमारे ऊपर कृपा बरसाओ, हमारे चित्त को शुद्ध कराओ, आपका स्मरण हमेशा रहे हमारे में, कभी हम भूल न जाए आपको, इस तरह के प्रार्थनाओं से जब हम अच्छे संग में रहते हैं तो धीरे 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 तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, ये सूक्ष्म चीजें हमें समझ में आ जाएंगे, नहीं तो आसानी से नहीं समझ में आएंगे, अगर हम दूसरी दिशा में भागते हैं हम समझ नहीं पाएंगे ये सब चीज। तो इस तरह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के द्वारा धीरे 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 जीवात्मा को असली स्तर पर लाने के लिए उन्होंने योजना बनाया है। श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की गौर भक्त वृंदा की जय। हरे कृष्ण।